श्रेष्ठ 97 रीतिकाल। रीतिकाल में कविता जनता की वस्तु न रहकर राजाश्रय में पहुंच गई। वीर कथाकार के कवियों की भांति कवि लोग रणशूर न थे और न उनमें वैसा अपने राज्य के प्रति वीरोल्लास था। वे तो गुलगुली गिल्मो और सुराही प्याले के भक्त थे। कोई राजा भी ऐसा न था जिसके लिए प्रबंध काव्य लिखा जाता। कविगण श्रृंगारिक विलासिता में मस्त थे और सस्ती वाहवाही चाहते थे। मतिराम देव आदि महाकवियों के संबंध में यह बात लागू नहीं है। भूषण उस समय के अपवाद होते हुए भी प्रबंध काव्य न लिख सके। यद्यपि शिवाजी में प्रबंध काव्य के नायक होने की क्षमता थी, तथापि भूषण समय के प्रवाह में बह गए और उन्होंने मुक्तक लिखकर ही संतोष किया। बिल्कुल ऐसी बात तो नहीं है कि रीतिकाल में प्रबंध काव्य लिखे ही नहीं गए। कुछ प्रेम गाथा काव्य भी लिखे गए और लाल ने छत्र प्रकाश और सूदन ने सुजान चरित लिखा, किंतु जो लिखे गए वे इस महत्व के नहीं। वर्तमान काल, हरिश्चंद्र और द्विवेदी युग। आधुनिक काल के प्रारंभ में हरिश्चंद्र और उनके अनुयायियों ने मुक्तक को ही अपनाया। हरिश्चंद्र जी कृष्ण भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। उन पर अष्टछाप के कवियों का पर्याप्त प्रभाव था। इसके अतिरिक्त उनका ध्यान देशभक्ति, समाज सुधार और नाटकों के उत्थान की ओर आकर्षित हो गया था। भारतेंदु युग में कोई प्रबंध काव्य न लिखा जा सका। द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता के उत्थान के कारण आदर्शवाद बढ़ा और प्राचीन आदर्शों की ओर ध्यान गया। गुप्त जी की भारत भारती ने सांस्कृतिक जागरण की ढेरी बजाई। प्राचीन आदर्श राम और कृष्ण के लोकोत्तर पावन चरित्रों में मूर्तिमान थे। उनका स्थायी अंग अंग्रेजी राज्य का बढ़ता हुआ बुद्धिवाद भी न धो सका। भक्तिभाव को बुद्धिवाद के अनुकूल बनाकर गुप्त जी और हरिओत जी ने राम तथा कृष्ण के चरित्र साकेत और प्रिय प्रवास में अंकित किए। गुप्त जी की अपेक्षा उपाध्याय जी के ऊपर बुद्धिवाद का प्रभाव कुछ अधिक है। हरिओत जी के कृष्ण कर्तव्य परायण लोक नायक ही हैं, किंतु गुप्त जी के राम साक्षात ईश्वर हैं। पृष्ठ 98। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं नरेश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। साकेत मंगलाचरण से पूर्व का प्रश्न। प्रिय प्रवास, खड़ी बोली के प्रारंभिक काल में मुक्तक काव्य का ही प्राधान्य था, किंतु उस समय भी मुक्तक को वह गौरव न मिल सका जो कि प्राय प्रबंध काव्य को मिला करता था। खड़ी बोली की इस कमी को पहली बार अयोध्या सिंह जी उपाध्याय ने पूरा किया। अतुकांत संस्कृत छंदों में लिखे हुए प्रे प्रवास का महाकाव्य के रूप में स्वागत किया गया। इस ग्रंथ में करुण विप्रलम श्रृंगार और वात्सल्य के वियोग पक्ष का प्राधान्य है। भगवान श्री कृष्ण जाति के लोकप्रिय नेता के रूप में आते हैं। प्राचीन हिंदी कवियों ने श्री कृष्ण के विलासी और लीलामय रूप को ही देखा था, किंतु उपाध्याय जी ने उनके कर्तव्य परायण और लोक रक्षक रूप को सामने रखा और राधा के चरित्र को भी श्री कृष्ण के अनुरूप लोक सेवक रूप ही प्रदान किया। उसका व्यक्तिक प्रेम विश्व प्रेम में परिणित होता हुआ दिखाया गया है। पाई जाती विविध जितनी वस्तुएं हैं जो सेवों में, जो प्यारे को अमित रंग और रूप में देखती हूँ, तो मैं कैसे ना उन सबको प्यार जी से करूँगी। यो है मेरे हृदय तल में विश्व का प्रेम जागा। प्रे प्रवास, जिस ज्ञान के उपदेश को बेचारे उद्धव मथुरा से देने आए थे, उसमें राधा पहले ही से रंगी हुई थी। वे इतनी कार्यशीला दिखाई गई है कि कृष्ण को कर्तव्य विमुख करके अपने घर भी लौटाना नहीं चाहती। प्यारे जीवे जगहित करे, गेह चाहे न आवे। उपाध्याय जी ने परंपरागत नवधा भक्ति को भी लोक सेवा का ही रूप दे दिया है। इस प्रकार हम प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण की एक नई झांकी देखते हैं। प्रिय प्रवास में गिरी गोवर्धन धारण की अलौकिक लीला को बुद्धिवाद की तुष्टि के लिए एक लौकिक रूप दिया है। गिरिराज का उंगली पर उठाना वास्तविक रूप में नहीं वरन लाक्षणिक रूप में स्वीकार किया जाता है। लक अपार प्रसार गिरेंद्र में ब्रज धारा देव के प्रिय पुत्र का सकल लोग लगे कहने उसे रख लिया उंगली पर श्याम ने। प्रिय प्रवास पृष्ठ 99। प्रिय प्रवास का भाव पक्ष पर्याप्त रूप में पुष्ट है। वर्तमान युग की कर्तव्य परायणता की मांग के साथ वैयक्तिक विरह वेदना को जितना आश्रय मिल सकता है उसका पूर्ण विस्तार है। वात्सल्य की भी पावन झांकी उसमें दिखाई देती है। घटनाक्रम का अभाव तो नहीं है, किंतु भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित घटनाएं स्मृति के रूप में ही वर्णित हुई हैं। प्रिय प्रवास के रंगमंच पर भगवान स्वयं नहीं आए, वरन गोप और गोपियों द्वारा ही विरह वर्णन के मिस उनके लोकप्रिय चरित्र का उद्घाटन किया गया है। इसलिए बहुत से लोग उसे महाकाव्य न कहकर एक विरह काव्य ही कहना पसंद करते हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने प्रिय प्रवास और साकेत दोनों को ही साहित्य की एक नई विधा एकार्थ काव्य के अंतरंग रखा है। सर्गो और छंदों की दृष्टि से प्रिय प्रवास में महाकाव्य का पूर्ण निर्वाह हुआ है। उसमें महाकाव्य के वर्ण विषय भी प्राय सभी आ गए हैं। वर्ण विषय के अंतर्गत प्राकृतिक चित्रण में वे आचार्य केशवदास से भी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने देश काल के विपरीत ब्रज में सभी अच्छे अच्छे वृक्षों की तालिका सी दे दी है। जम्बू अम्ब कदम्ब निम्ब फलसा जम्बीर और अवला लीची दाड़िम नारिकेल इमली और शिंशपा इंगुदी नारंगी अमरूद विल्व बदरी सागौन शाल आदि भी श्रेणीबद्ध तमाल ताल कदली और शालमली थे खड़े। प्रे प्रवास लीची नरिकेल सागौन और शाल के वृक्ष ब्रज में स्वाभाविक रूप से नहीं होते। हरिओर जी इस नाम परिगणन में उन करेल की कुंजों को तो भूल ही गए जिनके ऊपर रसिक रस खान कोटिन हूँ कलधौत के धाम न्यौछावर करने को तैयार थे। हरिओर जी ने नाम परिगणन के अतिरिक्त प्रकृति को अनेक संश्लिष्ट रूपों में चित्रित किया है। प्रायः सर्गों के आरंभ में जो प्रकृति वर्णन है वह अपने सहज स्वाभाविक रूप में आया है। यथा दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल विल्लप की प्रभा। प्रे प्रवास इसी प्रकार बाल कृष्ण के मथुरा गमन के समय का प्रकृति वर्णन भी बरवसी पाठकों की रतंत्री के एक एक तार को अपने करुण स्पंदनों से झंकृत कर जाता है। प्रिय प्रवास में यद्यपि महाकाव्य के बहुत से लक्षणों का निर्वाह हो जाता है तथापि उसका मूल ध्येय विरह वेदना रिपीट विरह निवेदन होने के कारण उसे महाकाव्य की पंक्ति में पृष्ठ 100 प्रश्न चिन्ह के साथ ही रखा जाएगा। श्री द्वारका प्रसाद मिश्र जी के कृष्णायन ने इस युग में कृष्ण चरित को प्रबंध काव्य के रूप में उपस्थित किया है। उन्होंने कृष्ण भगवान के ब्रज मथुरा और द्वारिका के जीवन को एक कथा के तारतम्य में आबद्ध करके चरित नायक के जीवन की अनेक रूपता के दर्शन कराए हैं। मिश्र जी ने प्रबंध काव्य की प्रतिष्ठित भाषा अवधि को ही अपनाया है। पुस्तक भर में दोहा चौपाई और सोरठा छंदों से काम लिया गया है। ये छंद कथा के प्रवाह को आवश्यक गति और विराम दे देते हैं। इस ग्रंथ में भी भावुकता की अपेक्षा कर्तव्य परायणता की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। प्रमुख पात्रों का चित्रण बड़े कौशल के साथ हुआ है। ब्रज और मथुरा के माधुर्यमय स्थलों में सूर की स्पष्ट छाप है। पहले तो बाल वर्णन की जो सरसता ब्रज भाषा में आ सकती है वह अवधि में नहीं मिश्र जी की अवधि में भी संस्कृत तत्समता की ओर अधिक झुकाव है। पूरे कृष्ण चरित को एक स्थान में रख देने के लिए यह ग्रंथ चिरस्मरणीय रहेगा। साकेत राम काव्य की परंपरा को गुप्त जी ने साकेत में पुनर्जीवन प्रदान किया है। साकेत में रामचरित के सहारे उर्मिला और लक्ष्मण को प्रधानता दी गई है। ये ही इसके नायक और नायिका हैं। लक्ष्मण जी लक्ष्मण से भी अपनी अधिक मुख्यता उर्मिला को मिली है। रवि बाबू और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन कवियों की उर्मिला विषयक उपेक्षा की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इस कमी को गुप्त जी ने पूरा किया। रामचरित्र से संबंधित सारी कथा में सबसे अधिक त्याग उर्मिला का ही था। इस बात को गुप्त जी ने सीता जी के मुख से स्पष्ट करा दिया। सीता जी को वनवास में श्री में भी राम का सहवास मिला था, किंतु बेचारी उर्मिला राजमहल के उस चीर परिचित प्रेमपूत वातावरण में लक्ष्मण के भातृ प्रेम और कर्तव्य परायणता के कारण पति प्रेम से वंचित रही। इससे सीता जी कहती हैं, आज भाग्य जो है मेरा वह भी हुआ ना हाँ तेरा। साकेत चतुर्थ सर्ग। इस प्रकार बेचारी उर्मिला पति के द्वारा भी उपेक्षिता रही और कवियों के द्वारा भी। गुप्त जी ने लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र को उभारा अवश्य है, किंतु उसके कारण रामचरित्र को गौड़ नहीं बनाया है। यह गुप्त जी का मर्यादावाद परम सराहनीय है। प्राचीन मर्यादा को अशून्य रखने के लिए ग्रंथ का नाम साकेत रखा, जिससे कि राम का महत्व बना रहे। इस नामकरण का एक दूसरा भी कारण है कि इसका घटनाक्रम साकेत नगरी में ही चला है, जो प्रत्यक्ष रूप से साकेत में नहीं घटित हुआ है। उसको दूसरे रूप से वे साकेत वासियों के संपर्क में ले आए हैं। विवाह के पूर्व जनकपुर की कथा को वीरा वर्णन में उर्मिला के मुख से कहला दिया है और वन प्रश्न 101 की घटनाओं को कुछ तो हनुमान जी के मुख से कहला दिया है और कुछ वशिष्ठ जी द्वारा प्रदान की हुई दिव्य दृष्टि से साकेत वासियों को दिखा दिया गया है। यह बात अलौकिक अवश्य कही जाएगी और अलौकिक के लिए इस युग में स्थान नहीं। फिर भी रेडियो और टेलीविजन के युग में ऐसी बातों को असंभव कहता ठीक नहीं। अपने अपने युग के साधन अलग होते हैं। आजकल यंत्र का बल है तो उस समय योग का बल था। चित्रकूट में जो घटनाएं हुई हैं, वे सब साकेत समाज की उपस्थिति में घटी हैं। गुप्त जी ने कथा की परंपरा को स्थिर रखते हुए भी कुछ नई उद्भावनाएं की हैं, जिनसे कि काव्य का सौष्ठव अधिक बढ़ जाता है। तुलसीदास जी ने तो चित्रकूटस्थ कैकेयी के संबंध में इतना कहकर संतोष किया है कि कुटीर रानी पछितानी अघाई, किंतु गुप्त जी ने उसके पश्चाताप को पूर्ण रूपेण मुखरित कर दिया है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागे नारी। साकेत अष्टम सर्ग। पति को उठाना ही सच्ची वैष्णवी भावना है। मंथरा चित्रण में भी गुप्त जी ने बड़ी मनोवैज्ञानिकता से काम लिया है। तुलसी की मंथरा की भांति वह भी उपेक्षा भाव धारण करती है, किंतु साथ ही फूट का ऐसा सबल बीज बो देती है कि जिसका निवारण कैकेयी का राम विषयक स्नेह भी नहीं कर सका। मंथरा कहती है, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक उन्हें जो गेह। साकेत द्वितीय सर्ग। गुप्त जी की दूसरी उद्भावनाओं में अयोध्या में रामचंद्र जी की सहायता के लिए एक फौज तैयार करना है। लक्ष्मण को शक्ति लगने की खबर सुनकर भरत और उर्मिला का वही बैठा रहना कुछ अस्वाभाविक सा था। तुलसीदास ने मानस में तो नहीं किंतु गीतावली में इस ओर संकेत किया है। देखिए, सात जाहु कपिसन रिपसूदन उठकर जोर खरे हैं, प्रमुदित पुल की पैंत पूरे जनु विधि बस सुधर धरे हैं। गीतावली लंका कांड। गुप्त जी ने इस कमी को पूर्ण रूप से पूरा कर दिया है। अयोध्या वासियों का उत्साह और उनकी तन्मयता लगभग वैसी ही है जैसे कि कृष्ण के महारास में सम्मिलित होने के लिए सूर और नंददास की गोपियों की थी। यूं ही शंख असंख्य हो गए, लगी न देरी, घनन घनन बज उठी गरज, तत्क्षण रण भेरी। पृष्ठ 102। काप उठा आकाश, चौक कर जगती जागी, छिपे क्षितिज में कहीं समय निद्रा उठ भागी। बोले वन में मोर, नगर में डोले नागर, करने लगे तरंग भंग सौ सौ स्वर सागर। उठी क्षुब्ध सी आहा, अयोध्या की नर सत्ता, सजग हुआ साकेत पुरी का पत्ता पत्ता, भय विस्मय को शूर दर्प ने दूर भगाया, किसने सोता हुआ यहाँ का सर्प जगाया। प्रिया कंठ से छूट सुभट कर शस्त्रों पर थे, त्रस्त वधु जन हस्त त्रस्त से वस्त्रों पर थे। प्रिय को निकट निहार उन्होंने साहस पाया, बाहु बड़ा पद रोप शीघ्र दीपक उकसाया। साकेत द्वादश सर्ग। अंत में वशिष्ठ जी ने योग बल से युद्ध भूमि में राम की विजय दिखाकर इस आवश्यकता का निवारण कर दिया था। साकेत में भरत का चरित्र पूर्ण निखार में आया है, उस पर गीतावली का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। कहीं कहीं लक्ष्मण का चरित्र आवश्यकता से अधिक उद्धृत हो गया है। भरत के संबंध में वे राम के शासन को भी मानने को तैयार नहीं होते। उनको इस शर का लश चुनूंगा क्षण में, प्रतिषेध आपका भी न सुनूंगा रण में। साकेत अष्टम सर्ग। किंतु उनकी इस उद्धृता में भी राम के प्रति भक्ति भावना की पराकाष्ठा दिखाई देती है। आपका भी इन शब्दों में राम के शासनाधिकार की स्वीकृति है। रामचंद्र जी का चरित्र कर्तव्य परायण होते हुए भी शुष्क और नीरस नहीं है। चित्रकूट में गुप्त जी ने सीता के पारिवारिक जीवन के सहवास सुख की अच्छी झांकी दिखाई है। गुप्त जी और गोस्वामी जी के मानस के राम में एक और भी अंतर है। तुलसी के राम मनुष्य रूप में भी ब्रह्म है और गुप्त जी के राम ब्रह्म होते हुए भी मनुष्य है। साकेत में सीता से वार्तालाप करते हुए रामचंद्र जी अपने ईश्वरत्व की भावना को प्रकाश में लाते हैं। अथवा आकर्षण पुण्य भूमि का ऐसा अवतरित हुआ मैं आप उच्च फल जैसा, जो नाम मात्र ही स्मरण मदीय करेंगे वे भी भव सागर बिना प्रयास करेंगे। साकेत अष्टम सर्ग। पृष्ठ 103। किंतु गुप्त जी तुरंत ही उनको देवत्व के उच्च शिखर से उतारकर मानवता की भावभूमि पर ले आते हैं और उनसे कहलाते हैं, पर जो मेरा गुण कर्म स्वभाव धरेंगे वे औरों को भी तार पार उतरेंगे। साकेत अष्टम सर। साकेत में भारतीय संस्कृति और पारिवारिक जीवन की भावना पूर्ण रूपेण परिपुष्ट हुई है। जैसा महाकाव्य के लक्षणों के प्रसंग में बतलाया गया है, इसके नायक भी आर्यों का आदर्श बताने ही आए थे, सुर कार्य साधन के लिए नहीं। साकेत का मूल उद्देश्य तो उर्मिला विषयक उपेक्षा को ही दूर करना है, किंतु उसमें प्रसंग वश यत्र तत्र गांधीवाद के सरल जीवन, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, हाथ की कताई बुनाई, तुम अर्धनग्न क्यों रहो अशेष समय में, आओ हम काते बुने गान के लय में, और विनत विद्रोह आदि के सिद्धांतों का भी समावेश हो गया है। राजा को प्रजा द्वारा चुने जाने की बात आधुनिक प्रजातंत्रवाद की प्रतिध्वनि है। देखिए, बोल उठे जन भद्र न ऐसा तुम कहो, देते हैं हम तुम्हें विदा ही कब अहो, राजा हमने राम तुम्ही को है चुना, करो न तुम योर हाय लोकमत अनसुना, जाओ यदि जा सको रौंद हमको यहाँ, यो कह पथ में लेट गए बहु जन वहाँ। बोले श्री रामचंद्र सविषाद यो, उठो प्रजाजन उठो तजो यह मोह तुम, करते हो किस हेतु विनत विद्रोह तुम। साकेत पंचम सर। उस समय के आदर्श राजा प्रजा के प्रतिनिधि अवश्य होते थे, किंतु उनमें चुनाव के विपरीत वंशानुक्रम की परंपरा थी। ये विचार काल दूषण के अंतर्गत अवश्य आएंगे। गुप्त जी के पक्ष में इतना ही कहा जा सकता है कि वे समय के प्रभाव से नहीं बच सके और उनके हृदय की भावनाएं देश काल के बंधनों को तोड़कर झंकृत हो उठी हैं। साकेत की प्रबंधात्मकता के संबंध में कुछ विद्वानों को संदेह है। यह बात माननी पड़ेगी कि उर्मिला के अत्यधिक विरह वर्णन के कारण साकेत का घटना प्रवाह कुछ कुंठित सा हो गया है। प्रेम प्रवास की भांति साकेत में भी बहुत सा घटनाक्रम स्मृति के रूप में आया है, किंतु घटनाओं का प्रत्यक्ष वर्णन भी प्रेम प्रवास की अपेक्षा पृष्ठ 104 इसमें अधिक है। कथा के प्रवाह वर्णनों के सौष्ठव और सांस्कृतिक पक्ष की प्रबलता के कारण साकेत प्रबंध काव्य के आदर्श के अधिक निकट आता है। वैयक्तिकता के प्राधान्य के कारण यह युग मुक्त गीतों का है। इनका प्रभाव साकेत पर भी पड़ा। उससे यत्र तत्र जैसे निज सौध सदन में उटज पिता ने छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, पृष्ठ 157 आदि बड़े सुंदर गीत भी आए हैं। किंतु उर्मिला के ये विरहोद्गार प्रबंध के विशाल प्रासाद में नगीने से जड़े हुए हैं। गुप्त जी का दूसरा आक्षेप यह है कि प्रथम सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण का प्रेमालाप अश्लीलता के वर्ज तट को स्पर्श कर गया। इस संबंध में इतना ही कहना आवश्यक है कि उर्मिला के त्याग और विरह वेदना की विषमता दिखाने के लिए तुलना में संयोग का सुख दिखाना वांछनीय था। यदि लक्ष्मण आरंभ से ही व्रती और उदासीन होते तो न उनके और न उर्मिला के त्याग का इतना महत्व होता। तुलसीदास जी की सी मर्यादा तो गुप्त जी राम के चित्रण में भी नहीं पालन कर सके, किंतु राम को मनुष्य के रूप में दिखाकर उन्होंने उनके लोकोत्तर चरित्र को हमारे लिए भी शक्य और संभव बना दिया है।